2 जनवरी दिन मंगलवार, दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को आदर्श राठौर का नमस्कार। पुणे के कोरेगांव भीमा में सोमवार को दलितों के कार्यक्रम के दौरान दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प की आंच महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों तक पहुंची।
कोरेगांव भीमा में कुछ दो ग्रुप्स आमने सामने आ गए और उनके बीच में पत्थरबाजी शुरू हुई, तो उस वक्त पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर के लाठीचार्ज।
कोरियाई प्रायद्वीप में दिखे तनाव घटने के आसार, दक्षिण कोरिया ने की उत्तर कोरिया से उच्च स्तरीय बातचीत की पेशकश। मदद रोकने के ट्रंप प्रशासन के कदम से पाकिस्तान पर क्या रहेगा असर?
उनकी डिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर इतनी ज़्यादा है, अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर इन्हसार करता है अपने स्ट्रेटेजिक वजूहात की वजह से, पाकिस्तान का इन्हसार अमेरिका के ऊपर है।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। दक्षिण कोरिया ने अगले हफ्ते उत्तर कोरिया के साथ सीधे बातचीत करने का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के उस सुझाव के बाद आया जब उन्होंने नए साल के भाषण में सियोल के साथ सीधे बातचीत की बात कही थी। दक्षिण कोरिया के यूनिफिकेशन मिनिस्टर ने कहा कि दोनों पक्ष सीमा पर 9 जनवरी को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित होगा। दोनों देशों के बीच आखिरी बातचीत 2015 में हुई थी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि देश के दुश्मनों ने अशांति पैदा कर दी है। इससे पहले बीती रात को प्रदर्शनों में 9 और लोगों की मौत हो गई थी। गुरुवार को शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर पहली बार खामेनेई ने कोई बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये दुश्मन प्रदर्शनकारियों को पैसा, हथियार और जासूस मुहैया करा रहे हैं। साथ ही खामेनेई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कहा है कि वो सही समय आने पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे।
شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید।
पिछले दिनों की घटनाओं पर देखें तो जो सभी इस्लामी गणराज्य के खिलाफ हैं, जिन सभी के पास पैसा है, जो राजनीति में हैं, जिनके पास हथियार हैं, जो सुरक्षा निकाय चलाने वाले लोग हैं, सभी ने इस्लामी स्थापना, इस्लामी क्रांति के खिलाफ मिलकर काम किया है। मैं इस पर अपने प्यारे लोगों से बात करूंगा। ये थे ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के शब्द। दक्षिणी सूडान में संघर्ष विराम का उल्लंघन रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे ने सभी पक्षों को आमंत्रित किया है। उनका कहना है कि फील्ड कमांडरों और उनके नेताओं को समझौता तोड़ने और मानवीय सहायता को रोकने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्रिसमस संध्या को लागू हुए संघर्ष विराम को अब तक कम से कम 5 बार तोड़ा जा चुका है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इसराइल ने अफ्रीकी प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए 90 दिनों का समय दिया है, वरना उन्हें जेल में डालने की चेतावनी दी गई है। तकरीबन 38,000 प्रवासियों ने शरण की मांग की थी, जिसमें से अधिक एरिट्रिया और सूडान के हैं। इनको इनके देश या युगांडा या रवांडा भेजा जाएगा। इन्हें देश छोड़ने के लिए $2,500 की पेशकश भी की गई है। वहीं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संस्था और दूसरे मानवाधिकार समूहों ने इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। पाकिस्तान पर धोखेबाजी का आरोप लगाने के बाद पाकिस्तान के कराची शहर में प्रदर्शनकारियों ने अमरीकी राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोमवार को ट्रंप ने ट्वीट कर कहा था कि अरबों डॉलर की सहायता के बदले अमरीका ने पाकिस्तान से सिर्फ झूठ और धोखा पाया है। अमरीकी सरकार $250 million से अधिक की सहायता राशि रोकने पर विचार कर रहा है। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कराची में पाकिस्तानी झंडे लहराए और अमरीका के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन के एक आयोजनकर्ता मुजम्मिल इकबाल ने कहा,
ये जो ट्रंप का बयान है, ये हकीकत में पाकिस्तान के किरदार की भी तौहीन है और जो पाकिस्तान ने ताउन अमेरिका के साथ किया उस ताउन की भी तौहीन है। और अमेरिका का ये हमेशा रवैया रहा है कि जब उसका काम निकल जाता है वो अपने दोस्तों को फरामोश कर देता।
ये थे प्रदर्शन के आयोजनकर्ता मुजम्मिल इकबाल के शब्द। नवंबर में गिरफ्तार किए गए 200 से अधिक राजकुमार, सरकारी अधिकारियों और व्यवसायियों में से एक सऊदी अरब के मंत्री को वापस मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते देखा गया है। सऊदी की सरकारी समाचार एजेंसी ने दिखाया है कि पूर्व वित्त मंत्री इब्राहिम अल आसफ दूसरे मंत्रियों के साथ साप्ताहिक बैठक में शामिल हुए। भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई के दौरान हिरासत में लिए गए कुछ लोगों को बड़ी राशि देने के बाद छोड़ दिया गया है, जबकि अभी भी बाकी के लोग हिरासत में हैं। आसिफ को कथित तौर पर पिछले महीने छोड़ा गया था। मिस्र ने आज 5 लोगों को फांसी दी, जिनमें से 4 लोग 2015 में मिलिट्री कैडेट की हत्या के दोषी थे। कफरल शेख में बम हमले में काफी लोग मारे गए थे। बीबीसी समाचार।
B बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। महाराष्ट्र के पुणे में सोमवार को दलितों के एक कार्यक्रम में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबरें आने के बाद अब राज्य के दूसरे इलाकों से भी तनाव की खबरें आ रही हैं। कोरेगांव भीमा में कल हुए बवाल में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। घटना की वजह क्या रही और अभी वहां पर किस तरह के हालात हैं, जानने के लिए कुछ देर पहले मैंने बात की बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुंडूर से, जो आज कोरेगांव भीमा पहुंचे थे।
इस साल इसकी 200 साल पूरे हो चुके हैं उस युद्ध को, तो इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ थी। इसी एरिया इलाके में उड़ू नाम का एक गांव है। कुछ दिन से जब हम लोग बात कर रहे थे पुलिस से, तो पुलिस ने भी कहा था कि कुछ दो समाज गुटों में वहां से हमेशा कुछ हफ्ते भर से एक तनाव की स्थिति थी। पुलिस ने उसमें जाके कुछ वेरीफाई करने की भी कोशिश की, लेकिन तनाव मौजूद था। और तभी कल दोपहर में जब लाखों जो दलित समुदाय के लोग हैं, वो जो हमेशा यहाँ भीमा कोरेगांव में आते हैं, इस दिन वो जब थे तो वहां पे पथराबाजी हुई और उसके बाद दोनों तरफ से आक्रामक हुए दो गुट हैं वो सामने आए। पुलिस बहुत बड़ी बंदोबस्त वहां पे था, लेकिन फिर भी वो कुछ देर बना रहा। करीब 40 के आसपास गाड़ियों को नुकसान हुआ, कुछ गाड़ियां फूकी गई, पथराबाजी हुई, इसमें कुछ लोगों को लगा भी। इसमें राहुल खटांगड़ी नाम के एक जो लड़का है उसकी भी मौत हो चुकी है और पुलिस उसमें तफ्तीश कर रही है। इसके जो पड़ताल हैं, इसकी जो प्रतिक्रिया है, वो पूरे राज्य भर में अब आनी शुरू हो गई है। घटना घट के कुछ 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी तनाव उस एरिया में मौजूद है। सेक्शन 144 लगाया गया है, लोग जमावबंद हैं, इकट्ठा नहीं आ पा रहे हैं। जब हम उस वक्त गए थे आज, तो वहां पे आज भी तनाव की स्थिति मौजूद थी। पुलिस बहुत बड़ी मात्रा में थी, सारे सीनियर ऑफिसर्स राज्य के जो वहां पे हैं, महाराष्ट्र गृह राज्य मंत्री भी वहां पे खुद जाके आए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सेवा इसके बारे में जुडिशियल कमीशन का ऐलान किया है और जुडिशियल कमीशन ऐलान करेगा कि क्या जातिवादी हिंसा बढ़ाने की कुछ कोशिश हुई थी और या फिर उसके ऊपर तफ्तीश होगी। पुलिस भी तफ्तीश कर रही है कि असली इसके रीजन जो है वो क्या है इसके बारे में, लेकिन फिलहाल टेंशन की स्थिति मौजूद हुई है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ भीमा कोरेगांव ही नहीं, लेकिन पुणे और फिर मुंबई समेत और कुछ इलाकों में भी आज इसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली। कुछ लोग रास्ते पे चले आए और कहीं जगह पे गाड़ियों का नुकसान हुआ, कहीं जगह पे आक्रमक हो गए अनेक गुट, ऐसे भी रिपोर्ट्स फिलहाल आए हुए हैं। महाराष्ट्र की तरफ से ऐलान तो किया गया है कि आप किसी भी अफवाहों पर ना ध्यान दें, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं। प्रकाश अंबेडकर जो हैं वो भारी बहुजन महासंघ के, उन्होंने कल महाराष्ट्र बंद का ऐलान भी किया है और इसकी प्रतिक्रियाएं शायद कल भी आती रहेंगी। ऐसा कुछ हुआ है जब हम आज भीमा कोरेगांव में देखने गए थे।
मयूरेश, जैसा कि आपने कहा कि जो एक आयोजन चल रहा था उस पर हमला किया, पुलिस का क्या कहना है कि ये हमलावर कौन है?
पुणे के जो पुलिस सुपरिंटेंडेंट हैं सुवेजक, उनसे बात हुई, वो खुद भी भीमा कोरेगांव में मौजूद थे। उनका ये कहना है कि यहाँ से नजदीक को एक बड़ू नाम का जो गांव है, वो भी एक हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट गांव है और वहाँ के एक मुद्दे की वजह से विवाद बना हुआ था दो गुटों की वजह से, और उसके बाद पुलिस ने पैसिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद कल उसकी वजह से कुछ आक्रमक हुए। पुलिस अभी भी ढूंढ रहे हैं कि असली उसमें लोग कौन थे। कुछ संस्थाओं का नाम भी इसमें आ रहा है, लेकिन अभी भी पुलिस का कहना है कि वो तफ्तीश कर रही है। कुछ लोगों ने उनको हिरासत में लिया गया है, इंक्वायरी शुरू है, लेकिन अभी भी पुलिस अरेस्ट किसको किया है, किसने मारा है, इसके बारे में कुछ भी अभी तक कहने से नहीं कह रही है।
हमारे सहयोगी मयूरेश कुंडूर ने पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक सुवेज हक से भी बात की और उन्होंने पूछा कि इस घटना की वजह क्या रही और अब तक क्या कार्रवाई की गई है।
कोरेगांव भीमा में कुछ दो ग्रुप्स आमने सामने आ गए और उनके बीच में पत्थरबाजी शुरू हुई, तो उस वक्त पुलिस ने तुरंत एक्शन लेकर के लाठी चार्ज किया और टीयर ग्रेनेड्स जो है, टीयर गैस का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके क्राउड को डिस्पर्स किया। डिस्पर्स करने के बाद में पुलिस फोर्स सफिशिएंट प्लेसेस पर लगाया गया है और इस वक्त सिचुएशन कंट्रोल में है।
फिलहाल कितने लोगों क्या नुकसान हुआ है गाड़ियों का और कुछ एक जान भी जा चुकी है, क्या उसकी कन्फर्मेशन है, क्या है?
हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता लगा है एक जो है इंसान की मृत्यु हुई है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू है और उसके अलावा तकरीबन 80 से 90 गाड़ियों का नुकसान हुआ है और हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियो कैमराज के फुटेजेस हैं, उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन करके आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है।
कुछ लोगों को हमने हिरासत लिया है, अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, कुछ वही कार्रवाई?
कुछ लोगों को डिटेन करके पूछताछ शुरू है और उनका इस इन्वेस्टिगेशन के दरमियान कितना उसमें उनका रोल था वो आइडेंटिफाई करके और वो कंक्लूड करने के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी।
जो कुछ एक विवादित जगह है, वास्तु है, उसके ऊपर कुछ विवाद चल रहा था ऐसा बताया जा रहा है, क्या वही वजह है और वो क्या वजह है आपने ढूंढा है क्या?
दो तीन दिन पहले वडू बुद्रुक में एक जो है स्तंभ के ऊपर और समाधि के ऊपर एक जो है डिस्प्यूट हुआ था, परंतु पुलिस के सही इंटरवेंशन की वजह से वो सही ढंग से हैंडल किया गया और उसमें पुलिसी कार्रवाई भी की गई थी। बाद में गांव के दोनों साइड्स के लोगों को साथ में लेकर के उनका दोनों का जो है साथ में बैठ के सॉर्ट आउट भी इशू किया गया था। मुझे लगता है ये इशू को में कुछ जो है समाज कंटक लोग हैं, उन्होंने ये कुछ जानबूझ के गलत कार्रवाई की है, तो ज़रूर पुलिस उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करेगी।
तो पुणे के कोरेगांव भीमा में जो गांव है वहां पे हालात तनावपूर्ण लेकिन शांत जरूर हैं, लेकिन मंगलवार को इस घटना की आंच मुंबई में भी महसूस की गई। कुछ देर पहले मैंने मुंबई में मौजूद बीबीसी संवाददाता जानवी मूले से बात की और पूछा कि आज क्या क्या हुआ और अभी किस तरह के हालात हैं।
जी, मुंबई में दोपहर के वक्त तो माहौल थोड़ा तनाव भरा रहा, क्योंकि मुंबई के जो पूर्वी उपनगर है, खास करके उन इलाकों में जिसमें घाटकोपर, कुर्ला, चेंबूर और गोवंडी ये इलाके शामिल है, इन इलाकों में लोग रास्ते पे उतरे, उन्होंने प्रदर्शन किए। कई जगह पर ये प्रदर्शन थोड़े वायलेंट भी हुए, जिसकी वजह से थोड़ी पत्थरबाजी भी हुई और रास्ता बंद कर दिया गया था, जिसके बाद ईस्टर्न एक्सप्रेस वे, जो पूर्वी उपनगरों की तरफ जाने वाला मुंबई का बड़ा रास्ता है, वो कुछ समय के लिए बंद था। साथ ही साथ जो हार्बर लाइन, इन्हीं इलाकों में जाने वाली जो रेलवे लाइन है, उसी में एक ट्रेन के ऊपर पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसके बाद ट्रेन भी कुछ समय तक बंद कर दी गई थी। लेकिन आम तौर पर माहौल मुंबई में अब थोड़ा शांत है, लोगों के मन में लेकिन एक चिंता की भावना जरूर है।
क्या ये पता चल पाया है कि जो प्रदर्शनकारी थे वो किसी संगठन के बैनर के तहत ये प्रदर्शन कर रहे थे?
जी, फिलहाल तो ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, या पुलिस या अथॉरिटीज भी किसी एक संगठन का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो संगठनाएं हैं उन्होंने कल के दिन बंद रखने का, कल के दिन स्ट्राइक का एक आह्वान किया है सभी लोगों को।
जैसा कि आपने कहा कि बंद का आह्वान किया गया है, तो इसे लेकर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं?
पुलिस तो कल की घटना के बाद ही मुंबई की पुलिस अलर्ट पर है। वैसे ही 31 तारीख के बाद मुंबई में अलर्ट पे ही पुलिस हमेशा रहती है, लेकिन इसके बाद पुलिस की तरफ से फिलहाल हमारे पास कोई जानकारी या फिर कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन मुंबई पुलिस ने लोगों को ये आह्वान अपने ट्विटर के माध्यम से जरूर किया है कि किसी भी अफवाह पे आप यकीन मत कीजिए, कोई अगर पोस्ट आप शेयर कर रहे हो तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिए और पैनिक बिल्कुल मत होना, क्योंकि अभी फिलहाल मुंबई में स्थिति उतनी गंभीर या तनाव भरी नहीं है जितना तनाव मुंबई के कुछ इलाकों में दोपहर के वक्त था।
एक गांव में घटी घटना का असर पूरे राज्य में कैसे देखने को मिल रहा है, इस बात को समझने के लिए हमारे सहयोगी राजेश जोशी ने बात की वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स से।
देखिए, भीमा कोरेगांव में 1818 में अंग्रेजों के तरफ से उस वक्त के महारों ने लड़ाई लड़ी थी पेशवाओं के खिलाफ। महाराष्ट्र में पेशवाओं का राज था, पेशवा जो थे वो ब्राह्मण थे, और इतिहास में ऐसे कई दाखले आते हैं कि उन्होंने जो है उस वक्त के महारों पर, मांगों पर, जो दलित समाज से आते हैं, आज जिनको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, उन पर कई तरह के अत्याचार किए थे। जैसे महारों को अगर घर से बाहर निकलना हो तो कमर में झाड़ू लगानी पड़ती थी और गले में जो है मटका लगाना पड़ता था, ताकि वो कहीं थूके ना, मतलब अगर थूकना है तो उसी में थूकना चाहिए।
ये तो हुई इतिहास की बात,
वही मैं बता रहा हूँ। उस इतिहास को लेकर जब महार पलटन ने अंग्रेजों के साथ आकर जब पेशवाओं को हराया, तो उस घटना की एक याद करके बाबा साहब ने वहां जाके वंदना दी थी। कल 200 साल पूरे होने वाले थे, इसलिए बहुत बड़ी तैयारी थी और जगह जगह से लोग वहां पर जमा होने वाले थे, और उसका आह्वान कई दलित संगठनों ने किया था। लेकिन ये ना हो, इसलिए कई गुट जो महाराष्ट्र में काम करते हैं और लोगों में विद्वेष की भावना पैदा करते हैं, ऐसे कई गुटों ने जाकर वहां पहले से ही तैयारी की थी, लोगों को भड़काया था, और ये जो है मराठा और दलित ऐसा संघर्ष इसमें शुरू हो जाए, इसके प्रयत्न किए थे। हालांकि कई प्रोग्रेसिव मराठा संगठनों ने इसका विरोध किया था और वो दलितों के साथ खड़े रहे थे, आज भी दलितों के साथ खड़े हैं। और इनके नाम आज भारी बहुजन महासंघ के जो नेता है प्रकाश अंबेडकर, जो बाबा साहब अंबेडकर के पौत्र है, उन्होंने आज उनके नाम लिए और उन पर जो है कार्रवाई करनी चाहिए सरकार ने, ऐसा उन्होंने खुले आम कहा है।
अब जो मुंबई में स्थिति है या महाराष्ट्र में स्थिति है, उसको क्या सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है, पुलिस की तैयारी इस ताकि ये फैले ना, इसकी तैयारी पूरी है?
देखिए, पहले तो ये चीज ही नहीं होनी चाहिए थी। स्टेट मशीनरी को जब इतने बड़े संख्या में लोग जमा होने वाले ये पता था, खुले आम आह्वान किया गया था और लोग पूरे महाराष्ट्र से आने वाले थे, तो पुलिस प्रशासन को ये पहले से ही पता होना चाहिए था। जब ये सारी चीजें हो रही थी, कई लोगों ने ये कहा है कि पुलिस देखते बैठी, जब लोग खुले आम आके पत्थर फेंक रहे हैं, गाड़ियां जला रहे या टायर जला रहे, तो पुलिस ने कुछ नहीं किया। तो आज भी जो बंबई में हुआ तो स्वाभाविक था कि जब इतनी बड़ी घटना हुई, कल से सोशल मीडिया पर मैसेजेस घूम रहे हैं, तो पुलिस को ये पता होना चाहिए था कि इसकी स्वाभाविक तरीके से रिएक्शन मुंबई में जगह जगह पर जो दलित बस्तियां हैं वहां आ सकती है।
पुणे के कोरेगांव भीमा की घटना के कारणों पर प्रकाश डाल रहे थे वरिष्ठ पत्रकार समर खड़स। अब बात करते हैं कोरियाई प्रायद्वीप की, जहां पर तनाव घटने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की पेशकश की है ताकि प्योंगचांग विंटर ओलंपिक्स में उत्तर कोरियाई खिलाड़ी हिस्सेदारी कर सकें। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने नए साल के पहले दिन कहा था कि वो विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए एक टीम प्योंगचांग भेजने के बारे में सोच रहे हैं। पिछले साल उत्तर कोरिया और अमरीका ने युद्ध के जरिए एक दूसरे का सफाया कर देने की धमकी दी थी, जिससे उस इलाके में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। सुनिए बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्ट राजेश जोशी से।
जिस इलाके से पिछले लगभग पूरे साल भर युद्ध की धमकियों की खबरें मिलती रही थीं, नए साल में तनाव कम करने की कोशिशों की शुरुआत हुई है। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की पेशकश को हाथों हाथ लिया है और कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने की कोशिश की जानी चाहिए। दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्री चो म्योंग ग्योन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीमा पर एक हफ्ते के भीतर ही एक बैठक होनी चाहिए।
हम खुलकर आपसी फायदे के मुद्दों पर आमने सामने बैठकर बातचीत का इंतजार कर रहे हैं ताकि संबंधों में सुधार हो सके और उत्तर कोरिया प्योंगचांग विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा ले सके।
दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्री चो म्योंग ग्योन के शब्द। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन ने अपने मंत्रिमंडल को बताया कि उन्होंने जुलाई में बातचीत की पेशकश की थी, जिसके जवाब में उत्तर कोरिया ने यह पहल की है।
उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध सुधारने की कोशिश उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम संबंधी सवालों को सुलझाए बिना रंग नहीं ला सकती, इसलिए विदेश मंत्रालय को हमारी मित्र शक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ सामंजस्य बनाते हुए काम करना चाहिए।
पर साथ ही राष्ट्रपति मून जेई इन ने माहौल सुधारने की जरूरत पर भी जोर दिया।
एकीकरण मंत्रालय और संस्कृति, खेल और पर्यटन मंत्रालय को बातचीत शुरू करनी चाहिए और ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि उत्तर कोरियाई खिलाड़ी प्योंगचांग विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा ले सकें।
दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेई इन के शब्द। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि अगर उत्तर कोरिया ने इस पेशकश को स्वीकार किया तो वहां से बातचीत में कौन हिस्सा लेगा। बीबीसी संवाददाता का कहना है कि अगर बात आगे बढ़ी तो दोनों देशों को यह तय करना पड़ेगा कि उत्तर की टीम किस रास्ते आएगी, उनके साथ क्या खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए और लोग भी आएंगे और क्या दोनों देश कोई साझा बयान जारी करेंगे आदि। उधर उत्तर कोरिया के मित्र देश चीन ने भी दोनों कोरिया के बीच पिघल रही बर्फ को सकारात्मक माना है और बातचीत का स्वागत किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये बहुत अच्छा कदम है।
हमने उत्तर और दक्षिण कोरिया के नेताओं के बीच उम्मीद बनाने वाले संदेशों के आदान प्रदान का नोटिस लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। चीन की सरकार इसका स्वागत करती है और इस बात का समर्थन करती है कि दोनों पक्ष आपसी संबंध सुधारने के लिए इस मौके का फायदा उठाएं ताकि कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करवाया जा सके।
ये थे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग के शब्द। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में योनसेई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन डेल्यूरी मानते हैं कि इस बातचीत से युद्ध के बादल छांटने में मदद मिलेगी।
جب دو کوریا آپس میں سہیوگ کریں گے تو ظاہر ہے تناؤ خود بخود کم ہو جائے گا اور کچھ سمے بعد اتر کوریا کو بھی اس میں اپنا فائدہ دکھے گا۔ دونوں کے بیچ جھگڑا پھر بھی رہے گا لیکن یہ دکشن کوریا کے لیے زیادہ فائدے کی بات ہوگی کہ وہ اتر کوریا کے ساتھ بات کرتا رہے بجائے اس کے کہ پچھلے سال کی طرح بات بڑھ جائے اور امریکہ کہنے لگے کہ یدھ کے علاوہ اور کوئی وکلپ نہیں ہے۔
یونسئی وشودیالے کے پروفیسر جان ڈیلیوری کے شبد۔ حالانکہ ابھی یہ اسپشٹ نہیں ہے کہ امریکہ نے اس پہل پر کیا پرتکریا جتائی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ویشوک طاقت چین یہ قطعی نہیں چاہے گا کہ کوریا کے دونوں حصوں کے بیچ بڑھ رہی اوشما پر کسی طرح کا تشاراپات ہو۔
پاکستان پر چرم پنتھیوں کو پناہ دینے کا آروپ لگاتے ہوئے سوموار کو امریکی راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے آرتھک مدد پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے پاکستان کو دھوکے باز کہا اور جھوٹا بھی کہا۔ ٹرمپ کے کڑے تیوروں کا اور آرتھک مدد رکنے کا پاکستان اور امریکہ کے رشتوں پر کیا اثر پڑنے والا ہے، جاننے کے لیے بی بی سی سنواداتا شمیرہ جعفری نے بات کی پاکستان میں موجود راجنیتک وشلیشک فاروق سلیم سے۔
فاروق صاحب، جو یو ایس پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ، انہوں نے ٹویٹ کیا رات پاکستان کے بارے میں، جس میں انہوں نے کہا کہ 15 سال کے دوران یو ایس نے 33 بلین ڈالرز کی مدد دی ہے اور اب ایسا نہیں چلے گا، پاکستان نے جھوٹ اور دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ کے پاکستان کے لیے کیا معنی؟
دیکھیے، آپ نے ایک لائن جو مس کی، وہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں 15 سال سے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ اب آپ کسی ملک کو 6 مہینے کے لیے بے وقوف بنا لیں، 1 سال کے لیے بے وقوف بنا لیں، 15 سال کے لیے اگر آپ بے وقوف بنتے چلے جا رہے ہیں تو آئی گیس یو ڈیزرو ٹو بی ویئر یو آر۔ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کا جو تعلق ہے وہ 70 سال پرانا تعلق ہے اور وہ اس کو میں مشابہت اس طرح دیتا ہوں کہ ایک بہت ہی مشکل شادی جو ہے وہ ہے۔ پارٹنرز جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے سے راضی نہیں ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی ڈیپینڈنس ایک دوسرے کے اوپر اتنی زیادہ ہے۔ امریکہ پاکستان کے اوپر انحصار کرتا ہے اپنے اسٹریٹجک وجوہات کی وجہ سے، پاکستان کا انحصار امریکہ کے اوپر ہے کیونکہ ہماری معاشی کمزوریاں بے تحاشا ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈنس جو ہے یہ چلتی چلی آ رہی ہے، اس میں اتار بھی بہت آئے ہیں، چڑھاؤ بھی بہت آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک اتار کی مناسب چڑھاؤ، اس میں بہت برا حال ہوا ہے ریلیشن شپ کا، لیکن طلاق تک معاملہ نہیں پہنچے گا۔
پاکستان کو جو یو ایس ایڈ ملی ہے، اس کا بریک ڈاؤن کیا ہے؟
ٹرمپ صاحب نے کہا ہے کہ 33 ارب ڈالر کی ایڈ ملی ہے، اس میں بریک ڈاؤن جو ہمارے پاس پہنچا ہے 14 ارب ڈالر کی تقریباً کوئلیشن سپورٹ فنڈ ہے اور اس میں سے 11 یا کچھ ارب ڈالر جو ہے وہ اکنامک ریلیٹڈ ایڈ ہے۔ دیکھیے، ڈائریکٹ ایڈ ٹو امریکہ، ڈائریکٹ ایڈ فرام امریکہ ٹو پاکستان تو تقریباً ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن پاکستان کا انحصار آئی ایم ایف کے اوپر، پاکستان کا انحصار ورلڈ بینک کے لونس کے اوپر، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے لونس کے اوپر، وہ اس سال بے تحاشا ہوگا۔ اور یہ تینوں ادارے ایسے ہیں جہاں کہ امریکہ جو ہے ان کو بہت کنٹرول کرتا ہے، اس کی ووٹنگ پاور بہت ہائی ہے یہاں پہ۔
تو اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے کہ اگر اور لو کی طرف چلے جائیں پاک یو ایس ریلیشنز؟
ہمارا پہلا امپیکٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشی امپیکٹ ہوگا۔ پاکستان میں آلریڈی ڈیویلیو ہو چکا ہے روپیہ، مزید شاید ڈیویلیویشن کی ضرورت پڑے گی۔ اگر پاکستان کے اوپر اور سختی کی جاتی ہے تو شاید ہمیں امپورٹ سے کچھ بند کرنا پڑے۔ ہم پیٹرول اور ڈیزل سارا امپورٹ کرتے ہیں، ہم بہت ساری کھانے کی چیزیں بھی امپورٹ کر رہے ہیں جن میں دالیں ہیں، جن میں کوکنگ آئل ہے، جن میں چائے ہے، تو شاید پاکستان کے اندر ان چیزوں کی کچھ قلت پیدا ہو جائے۔
اب پھر سے رخ کرتے ہیں بھارت کا۔ نیشنل میڈیکل کمیشن بل کو سنسد کی استھائی سمیتی کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ اس ودھیک کے پراودھانوں کے ورودھ میں انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن نے آج ڈاکٹروں کی ہڑتال بلائی تھی جو شام 6 بجے تک جاری رہنی تھی، مگر دن میں جیسے ہی اس بل کو استھائی سمیتی کے پاس بھیجنے کی خبر آئی ہڑتال واپس لے لی گئی۔ آپاتکالین سیواؤں کو اس ہڑتال سے دور رکھا گیا تھا، لیکن دیش کے کئی اسپتالوں میں او پی ڈی میں ڈاکٹر نہ ہونے سے مریضوں کو اسویدھا ہوئی۔ آخر ڈاکٹروں کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے، جاننے کے لیے سنیے ہماری سہیوگی سروپریا سانگوان کی یہ رپورٹ۔
بھارت میں اب تک میڈیکل سکشا، میڈیکل سنستھانوں اور ڈاکٹرز کے رجسٹریشن سے سمبندھت کام میڈیکل کاؤنسل آف انڈیا کی ذمہ داری تھی۔ بیتے شکروار کو سواستھ منتری جے پی نڈا نے لوک سبھا میں نیشنل میڈیکل کمیشن بل رکھا تھا، لیکن اس کے کچھ پراودھانوں پر میڈیکل جگت سے ہی آلوچنا سامنے آئی ہے۔ اس ودھیک کے کلاز 49 کے مطابق ایک برج کورس لایا جائے گا جسے کر کے آیوروید، ہومیوپیتھی کے ڈاکٹروں کو بھی ایلوپیتھی سے علاج کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ اس میڈیکل کمیشن میں سرکار دوارا گٹھت ایک کمیٹی अधिकारियों को मनोनीत करेगी, जबकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिकारियों की नियुक्ति चुनाव से होती थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष के अग्रवाल ने बीबीसी को बताया कि ये बिल मेडिकल क्षेत्र में लाल फीताशाही को बढ़ावा देगा।
आईएमए 3 लाख मेंबरों की संस्था है, लेकिन आईएमए को डिस्कशन के लिए नहीं बुलाया गया। आज पहली बार बुलाया गया तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बिल है ये पेशेंट फ्रेंडली नहीं है, कम्युनिटी फ्रेंडली नहीं है, इससे मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्टली होगा और 112 मेंबर्स की कमेटी जो डिसाइड करती है, आगे से 3 लोग डिसाइड करेंगे।
इसके अलावा निजी मेडिकल संस्थानों की फीस को लेकर भी विवाद है, क्योंकि ये कमीशन निजी मेडिकल संस्थानों की सिर्फ 40% सीटों की ही फीस तय करेगा। दिल्ली एम्स अस्पताल के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर विजय कुमार का सवाल है कि आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टरों को ब्रिज कोर्स करवाकर एलोपैथी की इजाजत क्यों दी जा रही है।
बिल्कुल नहीं कराएंगे, ये सिर्फ आप और हम जो गरीब लोग हैं ये सिर्फ उन्हीं को चूसने के लिए फील्ड में छोड़ दिए जाएंगे। और जहां मेडिकल नेग्लिजेंस वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स से इतनी हो रही है, तो 3 महीने की 1 साल की ट्रेनिंग करके वो लोग क्या आपको सेवा दे पाएंगे।
इन सभी विवादों के चलते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पूरे भारत में 1 दिन की हड़ताल का आह्वान किया था। मंगलवार को कई जगह अस्पतालों की ओपीडी को बंद रखा गया, इसके चलते कई जगह मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना के सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में इलाज कराने आए मरीजों और उनके परिजनों से बात की हमारे सहयोगी मनीष शांडिल्य ने।
तो पेट में हमको सूजन आ गया है, तो पेट के अल्ट्रासाउंड होना था, तो उसी लिए डेट दिए थे कि मंगल को आज गए हैं उस लगन, तो अंदर गए हैं तो अंदर में बेड पर सुलाया भी, सारा कपड़ा उतरवा के धरा दिया और फिर कहा कि चले जाओ, हड़ताल है इस जगह नहीं अब होगा।
जैसे ही इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को सौंपे जाने की खबर आई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली। अब स्टैंडिंग कमेटी नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पर अपनी रिपोर्ट बजट सत्र में पेश करेगी। सर्वप्रिया सांगवान, बीबीसी दिल्ली।
और अब समय है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं सूर्यांशी पांडे। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं क्रिकेट के मैदान की खबर से, जहां आशीष नेहरा के तरकश में एक और तीर आ गया है। अपने खेल के अनुभव को वो कमेंट्री बॉक्स में तो दिखा ही रहे थे, लेकिन अब आशीष नेहरा आईपीएल 11 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कोचिंग टीम से जुड़ गए हैं। लीग के दौरान पूर्व भारतीय कोच गैरी किर्स्टन और नेहरा टीम के मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे। आशीष नेहरा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बॉलिंग कोच रहेंगे। आपको बता दें 27 और 28 जनवरी को आईपीएल नीलामी होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने मेलबर्न में ड्रॉ हुए 4th एशेज क्रिकेट टेस्ट की पिच को खराब रेटिंग दी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास जवाब के लिए 2 महीने का समय है और इसके बाद संभावित सजा पर फैसला किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए इस्तेमाल हुई बेजान पिच की खिलाड़ियों और कमेंटेटरों ने आलोचना की थी और आईसीसी मैच रेफरी रंजन मधुगले ने अपनी आधिकारिक रिपोर्ट में पिच को खराब रेटिंग दी है। ये ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट मैदान है जिसे इतनी खराब रेटिंग दी गई है। मौजूदा नियमों के तहत आईसीसी की सजा आधिकारिक चेतावनी से लेकर जुर्माने तक हो सकती है, लेकिन गुरुवार को नए नियमों के आने के आसार हैं, जिसके अनुसार आधिकारिक रूप से खराब या अनफिट रेटिंग पाने वाली पिच को डिमेरिट अंक दिए जाएंगे, जो बाद में बैन का कारण भी बन सकते हैं।
और इससे पहले कि विदा लें, मुख्य समाचार मोहम्मद शाहिद से।
बीबीसी समाचार। दक्षिण कोरिया ने अगले हफ्ते उत्तर कोरिया के साथ सीधे बातचीत करने का प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के उस सुझाव के बाद आया है, जब उन्होंने नए साल के भाषण में सियोल के साथ सीधे बातचीत की बात कही थी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि देश के दुश्मनों ने अशांति पैदा कर दी है। इससे पहले बीती रात को प्रदर्शन में 9 और लोग मारे गए थे। दक्षिणी सूडान में संघर्ष विराम का उल्लंघन रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और नॉर्वे ने सभी पक्षों को आमंत्रित किया है। इसराइल ने अफ्रीकी प्रवासियों को देश छोड़ने के लिए 90 दिनों का समय दिया है, वरना उन्हें जेल में डालने की चेतावनी दी गई है। पाकिस्तान पर धोखेबाजी का आरोप लगाने के बाद पाकिस्तान के कराची शहर में प्रदर्शनकारियों ने अमरीकी राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की दूसरी सभा दिन भर के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने, फेसबुक पर आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाया ब्रजेश मिश्र ने। कल सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ दें इजाजत। नमस्कार।